पाठ 29 अध्याय 19 और 20। हमने पिछले सप्ताह के पाठ के अंत में मृत्यु और परलोक के विषय पर चर्चा शुरू की थी। चूंकि लगभग चौथी शताब्दी ई से ईसाई धर्म ने नए नियम में जो कुछ भी प्रकट किया था उसे पुराने नियम में पढ़ने की कोशिश करके पीछे की ओर काम किया है, इसलिए हम पुराने नियम के कुछ लेखों को पढ़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे वे स्वर्ग या नरक का उल्लेख कर रहे थे, भले ही वास्तविक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कोई भी अच्छा यहूदी विद्वान आपको बता सकता है कि ऐसा नहीं है, कि जो कुछ भी कहा गया है उसका मतलब वही है, और एक व्यक्ति का स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के साथ रहने या किसी ऐसे स्थान पर उतरने की अवधारणा जहां शैतान रहता है इब्रानी बाइबल के प्रेरित लेखकों के लिए कल्पना नहीं की गई थी। निश्चित रूप से हम पुराने नियम के माध्यम से आगे बढ़ते हुए मृत्यु और परलोक की अवधारणाओं को विकसित होते हुए देखते हैं, लेकिन हमें कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में निवास करने वाले मनुष्य का स्पष्ट विचार नहीं मिलेगा। विषय चाहे जितना भी बिखरा हुआ और असमान हो, खास तौर पर पुराने नियम में आम तौर पर कोई यह कह सकता है कि मृत्यु का संबंध शियोल से है। पुराने नियम के दृष्टिकोण से शियोल अधोलोक या नरक नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से एक वांछनीय स्थान भी नहीं था, भले ही यह सभी मनुष्यों के लिए अपरिहार्य था, बल्कि यह एक आम जगह थी जहां हर इंसान जाने की उम्मीद कर सकता था। कब्र, चाहे दुष्ट हो या अच्छा, एक इजरायली हो या मूर्ति पूजक, शियोल भौतिक अस्तित्व का अंत था, अधिकांश भाग के लिए एक बहुत ही धुंधली अपरिभाषित भावना थी कि एक अंडरवर्ल्ड में जीवन के बाद का अस्तित्व है। निस्संदेह यह मिस्र में इसराइल के चार शताब्दियों से चली आ रही परंपरा थी, जहां मृत्यु अधोलोक आत्माओं यहां तक कि एक प्रकार के पुनरुत्थान का अत्यधिक विकसित और प्रचलित सिद्धांत था जो पुनर्जन्म के समान था, लेकिन बिल्कुल वैसा ही नहीं था। शानदार पिरामिडों का पूरा उद्देश्य दिवंगत राजाओं या रानियों या कुलीनों की आत्माओं को आरामदायक और सुरक्षित बनाना था। बाइबल युग में दुनिया की लगभग हर जात संस्कृति में पूर्वजों की पूजा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वजों की पूजा जरूरी नहीं कि वैसी ही हो जैसी सुनने में लगती है, इसमें हमेशा पूजा शामिल नहीं होती थी। कभी कभी यह मृतकों की आत्माओं का सम्मान करना होता था, क्योंकि ऐसा करना एक दायित्व था, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए भी ऐसा ही करे। अन्य मामलों में एक तरह की पूजा होती थी जिसमें यह माना जाता था कि मृत व्यक्ति की आत्मा अंडरवर्ल्ड के देवता के साथ निकट संपर्क में थी, और शायद आप अपने पूर्वजों की आत्मा से अंडरवर्ल्ड के देवता से आपके लिए कुछ करने के लिए कह सकते थे। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि प्राचीन इब्रानियों ने अपने मृत्यु पंथ और अपने परलोक विश्वासों में पूर्वजों की पूजा को शामिल किया था। हम बाइबल के कई अंशों में इसका संदर्भ पाते हैं, खासकर जब यह याकूब और यूसुफ से संबंधित है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें मिस्र के बाहर उनके पूर्वजों के साथ दफनाया जाए ताकि वे अपने परलोक में उनके साथ संवाद कर सकें। फिर भी मृत्यु और परलोक पर बाइबल का साहित्य किसी भी तरह से मिस्र के धर्मशास्त्र के अनुरूप नहीं था। इब्रानियों के लिए मृत्यु नकारात्मक थी, मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जो भी अस्पष्ट भावना थी वह भी नकारात्मक थी। भौतिक जीवन मनुष्य के लिए अस्तित्व का सबसे अच्छा और उच्चतम रूप था, और मृत्यु केवल एक अप्रिय तथ्य थी। लंबा जीवन जीना एक आशीर्वाद था, जल्दी कब्र में चले जाना सामान्य तौर पर कट ऑफ कहा जाता था, खासकर अगर किसी को दुष्ट या ईश्वर के विरुद्ध अपराध करने वाला माना जाता था। जिस तरह से शियोल मृत्यु पर इब्रानी विचारों का आधार है, उसी तरह छाया शब्द किसी भी तरह के अस्तित्व के लिए सामान्य शब्द है, अगर कोई हो जो किसी इंसान ने अपनी मृत्यु के बाद ग्रहण किया हो। हालांकि सामान्य तौर पर मृत्यु की सबसे सुखद संभावना अपने पूर्वजों के साथ सोना थी, एक ऐसा वाक्यांश जिस पर बहुत बहस होती है। स्वीकृत विचार यह है कि कब्र में चाहे जो भी हो, अपने पूर्वजों के साथ सोना का मतलब है कि व्यक्ति शांतिपूर्ण स्थिति में था, न कि निरंतर चिंता या पीड़ा में रहने के विपरीत। यीशु के दिनों में न केवल ऐसी जगह का विचार प्रचलित था जहां मृतकों की आत्माएं रहती थीं, आत्माएं किसी चीज का इंतजार कर रही थीं, शायद न्याय का। लेकिन शारीरिक पुनरुत्थान की अवधारणा उस समय का सबसे चर्चित धार्मिक विषय था। सदूकियों जैसे कुछ लोगों ने शारीरिक पुनरुत्थान को नकार दिया, जबकि फरीसियों के ज्यादातर संप्रदायों ने शारीरिक पुनरुत्थान की संभावना को हां कहा। लेकिन शारीरिक पुनरुत्थान की अवधारणा भी वैसी नहीं थी जिसके बारे में हम आम तौर पर सोचते हैं, यानी हमारी आत्माएं या तो नरक में हैं या परमेश्वर के पास, और फिर हमारे भौतिक शरीर पुनर्जीवित हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं, स्वर्ग, अगर हम आस्तिक थे आगे के अस्तित्व के लिए। बल्कि यीशु के दिनों के यहूदियों के लिए और सदियों पहले से और कई मामलों में यह ऐसा ही है। मृतकों का पुनरुत्थान अक्सर धर्मत्यागी और पराधीन इज़राइल की बहाली के लिए केवल एक रूपक था। इसका शाब्दिक अर्थ यह नहीं था कि एक मृत व्यक्ति बेहतर शरीर में वापस जीवन में आ जाए। उस युग में कुछ लोगों के लिए इसका मतलब था कि इज़राइल को प्रभु द्वारा शुद्ध किए जाने और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के रूप में प्रमुख राष्ट्र बनाए जाने के बाद शायद वे लोग जो महान और शाश्वत राज्य के धर्मी सदस्यों के रूप में मर गए थे उन्हें वापस जीवन में लाया गया। एक सांसारिक भौतिक जीवन परमेश्वर के इस पुनर्स्थापित और शुद्ध किए गए राज्य इज़राइल में, लेकिन निश्चित रूप से वे कभी भी परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं थे। यीशुआ द्वारा प्रस्तावित और फिर संत पौलुस द्वारा विस्तारित विश्वासियों का ईश्वर की उपस्थिति में अनंत काल तक रहना स्वर्ग में उच्च आध्यात्मिक तल पर नया था। यहूदी वास्तव में एक आने वाली दुनिया, इब्रानी में ओलम हव्वा, में विश्वास करते थे, लेकिन आम तौर पर यह स्वर्ग की तुलना में मिलेनियम, ईसा मसीह का 1000 साल का शासन जो भौतिक रूप से पृथ्वी पर होता है, के व्यापक रूप से स्वीकृत ईसाई दृष्टिकोण की तरह अधिक दिखता था। हालांकि विभिन्न यहूदी संप्रदायों ने अलग अलग विश्वास किया, लेकिन विचार यह था कि इज़राइल के लिए एक नया स्वर्ण युग निकट था, आने वाली दुनिया ओलम हव्वा, जिसमें इज़राइल प्रमुख विश्व शक्ति होगी और ईश्वर द्वारा शासित इज़राइल अंततः पूरी पृथ्वी पर शासन करने वाले एक ईश्वरीय राज्य के रूप में अपना सही स्थान लेगा। संपूर्ण विश्व संक्षेप में यहूदी धर्म में परिवर्तित हो जाएगा और तोरह का पूरी तरह से पालन करेगा। लेकिन यह विचार कि मनुष्य की आत्मा ईश्वर के स्वर्गीय निवास स्थान में रह सकती है यीशु के आगमन तक नहीं था। वास्तव में यह विचार कि मनुष्य, जो हमारे सर्वोत्तम रूप में इतना अशुद्ध और अधर्मी और पापी है, ईश्वर के स्वर्ग में और उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकता है, हास्यास्पद से लेकर ईर्ष्यानिंदा तक कहीं भी था। और निश्चित रूप से इस अवधारणा को सबसे अधिक विद्वान यहूदियों के बहुमत द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, सबसे कम विद्वान यहूदी किसान इस विचार के प्रति अधिक खुले थे। इसलिए आम लोग ही थे जो यीशु के पास झुंड में आए, और उच्च शिक्षित लोग जो मुट्ठी भर थे ने उनसे दूरी बना ली। लैव्य व्यवस्था के हमारे अध्ययन के अनुसार निष्कर्ष यह है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अधिकांश इसराइलियों का मानना था कि वे होते हैं। न ही किसी को मृतकों से संपर्क करने वाले किसी व्यक्ति से कोई लेना देना होना चाहिए। इस पर मेरा सबसे अच्छा विचार यह है कि परमेश्वर यह नहीं कह रहे थे कि मृत लोगों की आत्माओं से वास्तव में संपर्क किया जा सकता है, बल्कि ऐसे मामलों से निपटना अशुद्ध और अपवित्र था, और केवल अपवित्र लोग ही ऐसी कोशिश करते हैं। मृतक मर चुके हैं और मृत्यु परमेश्वर के लिए घृणित है। मृतकों की आत्माएं कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन शास्त्रों में केवल मूर्ति पूजक लोग ही इन आत्माओं के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। एक जीवित प्राणी मृत प्राणी के साथ संवाद करता है, लेकिन मृतकों की आत्माओं के साथ संवाद करने की कोशिश करने का रवैया मूर्ति पूजा, झूठे देवताओं की पूजा करने जैसा है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे असली नहीं हैं। ये देवता पहले से ही मौजूद नहीं है। बाइबल कभी कभी उन्हें झूठे देवता, लो एलोहिम, गैर देवता कहेगी,
और वास्तव में आत्मा माध्यम कभी कभी जिनके साथ संगति करते हैं या जिनकी पूजा करते हैं वे राक्षस होते हैं जो झूठ बोलते हैं और दावा करते हैं कि वे उस मृत व्यक्ति की आत्मा हैं जिससे कोई संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तब वे शैतान के इशारे पर उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, उसे धोखा दे सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी राक्षस से संपर्क कर सकता है और उसके साथ संगति कर सकता है, और हमें पुराने और नए नियम में ठीक इसी बात के उदाहरण मिलते हैं।
लय व्यवस्था 19 पर वापस जाए, पद 32 में परमेश्वर ने इसराइल को निर्देश दिया है कि उसे बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यह पूर्वजों की पूजा नहीं है, न ही इसका मतलब यह है कि घर का सबसे बूढ़ा जीवित सदस्य जरूरी तौर पर प्रभावशाली और अधिकार वाला होता है। इसका मतलब है कि आम तौर पर उनकी देखभाल करके और उनकी जरूरतों का ख्याल रखकर उनका सम्मान करना, क्योंकि जीवन के इस मोड़ पर वे शारीरिक रूप से खुद की पूरी तरह से देखभाल करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि बुजुर्गों ने जो ज्ञान हासिल किया है उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसकी सराहना की जानी चाहिए और उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और आदेश है जिसका लगभग 4 दशकों तक कोई मतलब नहीं होगा। किसी अजनबी के साथ गलत व्यवहार न करें। एक गैर जो आपके साथ आपकी भूमि पर रहता है, भूमि निश्चित रूप से कनान की भूमि है, विदेशियों के साथ उचित व्यवहार करने और उन विदेशियों को भी अनुमति देने के कर्तव्य का यह विषय, जो अपने मूर्ति पूजक देवताओं को छोड़ना चाहते हैं और इसराइल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाना चाहते हैं, इसराइल राष्ट्र के स्वागत योग्य सदस्यों के रूप में बार बार दोहराया जाता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह भौतिक अग्रदूत था। द्वैत की वास्तविकता का सांसारिक और भौतिक पक्ष, उस समय की तैयारी करना जब यीशु आएंगे और गैर यहूदियों, विदेशियों, अजनबियों को उस पर विश्वास के माध्यम से इसराइल में शामिल होने के लिए पेश करेंगे। अधिक विशेष रूप से आध्यात्मिक अर्थ में इसराइल में शामिल होने के लिए, भौतिक अर्थ में नहीं, परमेश्वर और इसराइल के बीच किए गए अनुबंधों में शामिल होने के लिए, इसराइल के स्वर्गीय आदर्श में शामिल होने के लिए, यहोवा के प्रति पूर्णतः समर्पित लोगों का राष्ट्र। इस प्रकार हमारे पास रोमियो 11 और पौलुस हैं, जो बताते हैं कि मसीह में विश्वास रखने वाले अन्य जातियों को इसराइल में कैसे जोड़ा जाता है, एक आत्मिक रूप में न कि भौतिक रूप में, बेशक साथ में, स्थान पर नहीं, और छोटे भाई के रूप में न कि बड़े के रूप में।
इतना ही नहीं, बल्कि इसराइल को ऐसा करने का कारण परमेश्वर द्वारा दिया गया एक और उपदेश है कि उससे वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते हो, और इसराइल को उस विदेशी को पहचानने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए जो उनके बीच रहना चाहता है, क्योंकि जैसा कि श्लोक 34 के अंत में कहा गया है, क्योंकि तुम मिस्र देश में विदेशी थे। मिस्रियों के अनुभव का एक कारण मूल्यवान सबक सीखना था, और उन सबकों में से एक यह था कि ये विदेशी लोग परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं और वह उनसे प्रेम करता है, इसलिए आपको भी उनसे प्रेम करना चाहिए।
श्लोक 35 और 36 इसराइलियों को बताते हैं कि उन्हें व्यापार करते समय एक दूसरे को या विदेशियों को धोखा नहीं देना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सूखे और तरल माप का उपयोग करना चाहिए, और जिस पैमाने का वे उपयोग करते हैं वह सटीक होना चाहिए, और ग्राहक को धोखा देने के लिए सेट किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने समय के साथ एक से अधिक बार उल्लेख किया है, यह मध्य पूर्वी संस्कृति थी और अब भी है कि व्यापारिक लेन देन में धोखा देना, छल करना, रिश्वत देना और जीतने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह करना। सबसे अच्छे और सबसे सम्मानित व्यवसायी वे हैं जो सबसे चतुर हैं और सबसे अच्छा धोखा दे सकते हैं। इसके बजाय परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का अनुकरण करना चाहिए, सभी के प्रति निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए।
यह अध्याय परमेश्वर की इस याद के साथ समाप्त होता है कि उसके सभी नियमों और आदेशों का पालन करें, न कि केवल सुविधाजनक नियमों और आदेशों का। आइए लय व्यवस्था अध्याय 20 पर चलते हैं। अध्याय 20 में इसराइल की आम जनता को पवित्रता का परमेश्वर का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले अध्यायों में, विशेष रूप से 18 और 19 में, परमेश्वर ने नियमों और अध्यादेशों की एक श्रृंखला निर्धारित की थी, जिसमें मूल रूप से कहा गया था कि ऐसा मत करो जैसा कि मूर्ति पूजक करते हैं, इसके बजाय वैसा करो। अब अध्याय 20 में यहोवा पीछे हटता है और कहता है, यदि तुम इन निषिद्ध कामों में से कोई भी काम करोगे जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही मना किया है, तो यह होगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड अध्याय 20 का मुख्य बिंदु है। और जिस प्रकार आधुनिक नागरिक समाज में हम दंड की प्रकृति और गंभीरता के माध्यम से किसी विशेष संस्कृति द्वारा किसी विशेष नैतिक विफलता को दी जाने वाली गंभीरता के स्तर को निर्धारित कर सकते हैं, उसी प्रकार हम यह भी देख सकते हैं कि यहोवा के विरुद्ध कौन से अपराध उसे सबसे अधिक अपमानजनक लगते हैं, प्रत्येक के लिए निर्धारित दंड की गंभीरता के अनुसार। जैसा कि हम अध्याय 20 को पढ़ते हैं, सामान्य संरचना यह है कि हम ईश्वर के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराधों से आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए उल्लंघनकर्ता को अपने जीवन को खोना पड़ता है, उस स्तर तक जिसमें व्यक्ति किसी तरह से कट ऑफ हो जाता है। कृपया ध्यान रखें कि अध्याय 20 में सूचीबद्ध प्रत्येक उल्लंघन बहुत गंभीर है, यहां तक कि उल्लंघन के थोड़े कम स्तर के पाप भी, जिनमें व्यक्ति कट ऑफ हो जाता है, कभी कभी ईश्वर के लिए घृणित कहलाते हैं। आधुनिक समय के कानूनी विचार में ये सभी नैतिक विफलताएं गंभीर अपराध हैं। यह मुद्दा इस बात के समान है कि क्या कोई अपराध मृत्युदंड योग्य अपराध है या ऐसा अपराध है जिसमें आपको आजीवन कारावास हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। लैव्य व्यवस्था 20 पूरा पढ़ें। मैं अध्याय 20 में बताए गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं, क्योंकि हम इन आयतों में चर्चित अधिकांश पापपूर्ण कृत्यों के अर्थ का पहले ही गहन अध्ययन कर चुके हैं, और आज मैं सामान्य से थोड़ा ज्यादा अपने साबुन के डिब्बे पर रहने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि ये सिद्धांत हमारे आधुनिक जीवन में बहुत स्पष्ट है। इसलिए कमर कस लें। ध्यान दें कि पद एक के अंत और पद दो के प्रथम भाग के बीच हमें एक ठोस परिभाषा मिलती है कि ये कानून किसके लिए है, और यह इसराइलियों में से कोई भी हो सकता है, जिसमें उनके बीच रहने वाला कोई भी अजनबी शामिल है। यह इसराइल के किसी भी नागरिक को संदर्भित करता है जो स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ इब्रानी या कोई विदेशी हो सकता है, जिसने यहोवा की पूजा करने के लिए अपने परमेश्वर को त्याग दिया है और इस तरह औपचारिक रूप से इसराइल में शामिल हो गया है। और इसमें इसराइल के बीच रहने वाला कोई भी गैर शामिल है। गैर एक विदेशी है जो खुद को इसराइल में शामिल नहीं करता है, लेकिन वह संभवतः इस तरह के रिश्ते से मिलने वाले लाभों के लिए इसराइल के बीच रह रहा है। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है पुराने नियम के नियम सिर्फ इसराइल के लिए हैं। इसका मतलब है, बेशक इब्रानी वंश के लोगों के लिए, और इसीलिए पुराने नियम का कुछ भी आधुनिक गैर यहूदी ईसाइयों पर लागू नहीं होता जो इब्रानियों के रूप में पैदा नहीं हुए हैं, या जैसा कि हम आज कहते हैं यहूदी। खैर, मुझे उम्मीद है कि अब तक मैंने आपको दिखा दिया होगा कि सच्चाई से ज्यादा दूर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहता हूं कि जिस तरह से परमेश्वर के नियमों का पालन करने से हमें मुक्ति नहीं मिलती, उसी तरह से इसराइलियों के लिए भी ऐसा नहीं था। कानून हमें सिखाता है कि पवित्रता क्या है और यह कैसी दिखती है, परमेश्वर को क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, परमेश्वर की नजर में क्या अच्छा है और क्या नहीं। तोरह का उद्देश्य एक छुराए गए व्यक्ति को पवित्र जीवन जीना सिखाना है, न कि एक छुराए न गए व्यक्ति को छुराना। और यहां हम पाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति औपचारिक रूप से परमेश्वर के लोगों में से एक बने बिना परमेश्वर के लोगों के बीच रहना चाहता है, तो यह अनुमेय है, लेकिन उन्हें इजरायली समाज के उन्हीं नियमों और कानूनों के अधीन रहना होगा। और नियम एक है, कोई मूर्ति पूजा नहीं, विशेष रूप से मोलेक पूजा नहीं, मोलेक पूजा यहोवा के लिए विशेष चिंता का विषय थी, क्योंकि यह कनानियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग द्वारा, वादा किए गए देश के वर्तमान निवासियों द्वारा और ज्ञात दुनिया भर में कुछ अन्य संस्कृतियों द्वारा प्रचलित थी, जिनका सामना इसराइलियों को करना था। उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि बहुत से लोग वादा किए गए देश में आते थे जो इसराइल में शामिल होना चाहते थे, या आमतौर पर आर्थिक कारणों से कुछ समय के लिए इसराइल के साथ रहना चाहते थे, जो अन्य देवताओं के उपासक थे। इसलिए इस विषय के बारे में कानून बनाना आवश्यक था, क्योंकि परमेश्वर के नियम परमेश्वर की भूमि पर लागू होने थे। यह विशेष मिथ्या देवता मोलेक विशेष रूप से वर्जित था, क्योंकि उसका मुख्य गुण यह था कि वह मानव रक्त की मांग करता था। वास्तव में वह बच्चे की बलि मांगता था। अब जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि बाइबल में लोगों के नाम संस्कृति से संस्कृति में भिन्न थे। उदाहरण के लिए निम्रोद एक बेबीलोनियन नाम था और अशूर वही नाम है जो केवल असीरियन भाषा में है। इसलिए हम इसे मोलेक के साथ भी देखते हैं। जब हम पाते हैं कि विभिन्न दूर दराज की संस्कृतियों में लगभग समान गुणों वाले देवता की पूजा की जा रही है, भले ही अलग अलग नामों से जाना जाता हो, हम काफी हद तक निश्चित हो सकते हैं कि यह वही देवता है जिसकी पूजा की जा रही है। उदाहरण के लिए एस्टेरोथ, इश्तार, एस्टेर्ट और ईस्ट्रे सभी एक ही देवी, प्रजनन देवी हैं। बस उस संस्कृति की भाषा अलग है जहां उनकी पूजा की जाती है। वैसे इस देवी के नाम को अंततः एक एंग्लो सैक्सन नाम मिला जो हमारे लिए काफी परिचित है। उसका नाम है ईस्टर, और हां, यहीं से हमें ईसाई छुट्टी का नाम मिला। मोलेक एक उच्च देवता, एक मुख्य देवता, एक एल था। चूंकि दुनिया के लोग कई देवताओं की पूजा करते थे, इसलिए देवताओं का एक पदानुक्रम विकसित हुआ। देवताओं को एक क्रम में रखा गया। कुछ देवता अन्य देवताओं के अधीन थे या कम से कम उनसे कम शक्तिशाली थे। एक प्रजनन देवी, एक बारिश का देवता, एक अंडरवर्ल्ड का देवता और एक फसल का देवता कमतर देवता थे। इसलिए हमेशा एक मुख्य देवता होता था, अन्य देवताओं से ऊपर का देवता जो पदानुक्रम के शीर्ष पर बैठता था। और मोलेक और उसके विभिन्न नाम मुख्य देवता थे। वास्तव में एक ईश्वर को अन्य सभी से श्रेष्ठ मानने की यह अवधारणा इब्रानी संस्कृति में भी दिखाई देती है। इब्रानी एल, जैसा कि एलोहिम या एल शद्दाई में है, का सीधा अर्थ है सर्वोच्च ईश्वर या मुख्य ईश्वर। यदि तुलना करने के लिए कोई अन्य ईश्वर न हो तो ऐसे शब्द का कोई अर्थ नहीं है, और एल अक्कादियन आईएल का एक समानार्थी शब्द है जिसका अर्थ निश्चित रूप से सर्वोच्च ईश्वर भी है। जब हम अपनी बाइबल में प्रभुओं का प्रभु और सभी देवताओं से ऊपर ईश्वर और राजाओं का राजा जैसे वाक्यांशों को यहोवा, यहाँ तक कि यीशुआ के लिए भी देखते हैं, तो ये इसराइलियों के बीच बहु ईश्वर पूजा के दिनों से सांस्कृतिक भाषा के अवशेष हैं। हाँ, इब्रानी में और यहाँ तक कि इसराइल राष्ट्र में भी कई ईश्वर होने का विचार पूरे पुराने नियम की अवधि के दौरान और नया नियम के समय तक प्रचलित था। हम इसके बारे में बस एक मिनट में और बात करेंगे। मोआब में, जो वादा किए गए देश की सीमा पर था, मोआबियों ने मोलेक को केमोश कहा। अम्मोन में, एक और सीमावर्ती राष्ट्र, अम्मोनियों ने इसी देवता को बालपोर कहा, और वह संभवतः बाल जेबूब भी था। बाद में ग्रीक और रोमन संस्कृति में मोलेक को मंगल और शनि कहा जाता था। एक ही देवता, विभिन्न समाजों के लिए अलग अलग नाम। हमने मोलेक का नाम सबसे पहले लैव्य व्यवस्था 18 में सुना था, और अब हम इसे फिर से लैव्य व्यवस्था 20 में पाते हैं, लेकिन एक या दूसरी भाषा में उसका नाम पूरे तनाक पुराने नियम में बार बार दोहराया जाएगा। अब हम कई शब्दों और वाक्यांशों को देखने जा रहे हैं कि मोलेक अपने अनुयायियों से क्या चाहता था, खासकर उनके बच्चों के संबंध में। हम शब्दों को देखेंगे, सौंपना, समर्पित करना, भेंट करना और कुछ अन्य। एक समय ऐसा माना जाता था कि उनमें से केवल एक या दो शब्द ही मोलेक के लिए बच्चे की भागीदारी के सबसे चरम संस्करण को इंगित करते थे, जो कि एक बच्चे की हत्या करना और उसे तुष्टिकरण के रूप में मोलेक को देना था। विचार यह था कि मोलेक को बच्चों की पेशकश करने के अन्य रूपों का मतलब केवल यह था कि बच्चा मोलेक को समर्पित था, जैसा कि आज कुछ चर्चों में परमेश्वर को बच्चे को समर्पित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यह एक सौम्य यद्यपि विधर्मी घटना थी, जिसका अर्थ था कि माता पिता उस बच्चे को परमेश्वर मोलेक की पूजा करने के लिए बरा करेंगे। हालांकि अब आम सहमति यह है कि ये सभी शब्द एक ही परिणाम के लिए अलग अलग मुहावरे मात्र हैं। बच्चे को अनुष्ठान पूर्वक मार दिया जाता है, कभी कभी बच्चे को होम बलि बना दिया जाता है, शायद और भी अधिक बार बच्चे को मार दिया जाता है और उसे मोलेक को समर्पित करने के लिए एक नई इमारत की नींव में दफना दिया जाता है, या उस इमारत या परिवार या वहां होने वाली गतिविधि पर मोलेक का आशीर्वाद मांगा जाता है।
अब बहुत दुख की बात है कि इज़राइल का इतिहास इस भयावह पंथ के झूठे देवता के सामने झुकने से भरा पड़ा है। इज़राइल ने कभी कभी अपने बीच रहने वाले विदेशियों द्वारा मोलेक की पूजा को केवल स्वीकार कर लिया, स्पष्ट रूप से सहिष्णुता के लिए। लेकिन इज़राइल ने विभिन्न युगों में अपने लिए भी मोलेक की पूजा स्थापित की। अपनी बाइबल में पहला राजा 11 खोलिए, हम आयत 1-8 को देखेंगे। पहला राजा 11वीं कक्षा का 1-8 पढ़ें।
राजा सुलेमान ने मोलेक सहित कई मूर्ति पूजक देवताओं की पूजा करने के लिए उच्च स्थान बलिदान की वेदियां बनवाई। उसने सबसे घृणित झूठे देवताओं की एक लंबी सूची की पूजा में भाग लिया और उसने अपने परिवार को भी ऐसा करने की अनुमति दी और अपने लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा नहीं है कि वह अनिवार्य रूप से इन देवताओं में विश्वास करता था, लेकिन कम से कम उसने यह दिखाना राजनीतिक रूप से फायदेमंद समझा कि वह अपने राज्य में उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है जो उसके विश्वास के विपरीत विश्वास करते थे। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि उसने यह सब प्रेम में किया। उसका उद्देश्य प्रेम था। क्या यह आपको चौंकाता है? वैसे तो चौंकना चाहिए। तोरह क्लास के बाद 1 से ज्यादा नाराज लोग मेरे पास आए और मुझसे कहा कि महान राजा सुलेमान द्वारा दूसरे देवताओं की पूजा करने के बारे में मेरी शिक्षा बहुत गलत थी। बाइबल का एक नायक, जिसे बाइबल की 3 प्रेरित पुस्तकें लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें से एक नीति वचन, संभवतः पुराना नियम, शास्त्रों में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली है, कम से कम चर्च द्वारा, कैसे परमेश्वर के ऐसे आदमी पर दूसरे देवताओं की पूजा करने का आरोप लगाया जा सकता है? खैर, यह सब साफ साफ है, इसकी सारी बदसूरत सच्चाई। सुलेमान, जो पहले मंदिर का निर्माता था, ने यहोवा की पूजा की, लेकिन हमें बताया गया है कि उसने अपनी विदेशी पत्नियों को संतुष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर दूसरे देवताओं का भी सम्मान किया। ताकि आप समझ सकें, सुलेमान ने उन सभी स्त्रियों से विवाह इसलिए किया था ताकि वह संध्याओं बना सके। उस युग में किसी अन्य राष्ट्र के साथ गठबंधन बनाने का यही सामान्य तरीका था। प्रत्येक पत्नी किसी अन्य राष्ट्र के साथ गठबंधन का प्रतिनिधित्व करती थी।
जो बात इसे और भी ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है वह यह है कि ऐसा नहीं था कि सुलेमान ने जीवन की शुरुआत एक मूर्ति पूजक के रूप में की थी और फिर हमें उन मूर्ति पूजक देवताओं को अस्वीकार करके और इज़राइल के परमेश्वर की पूजा करके उसका सुखद अंत देखने को मिलता है। नहीं, उसका लालन पालन लैव्य व्यवस्था नियमों के तहत हुआ था। वह उन्हें अच्छी तरह से जानता था। शास्त्र एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर पेश करते हैं जो इन दूसरे देवताओं के लिए अपनी इच्छा में और उससे बाहर निकलता रहा। निस्संदेह वह यहोवा की पूजा उसी समय करता था जब वह इन झूठे देवताओं की पूजा कर रहा था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने कभी प्रभु को अस्वीकार किया था। हर समय यह सोचता रहा कि वह एक अच्छा काम कर रहा है। इसका यही मतलब है जब यह कहा जाता है कि उसने प्रेम में मूर्ति पूजा की। वह खुद को धोखा दे रहा था। वह जो कर रहा था वह दूसरों को खुश करने के लिए कर रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सुलेमान उन दूसरे देवताओं की पूजा कर रहा था, इज़राइल के सभी सिद्धांतों का मजाक उड़ा रहा था, और इससे इज़राइल के उन नागरिकों को कितनी ठेस पहुंची होगी, गुस्सा आया होगा और वे नाराज हुए होंगे जिन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के प्रति सच्चे रहने के लिए लगन से काम किया था।
क्या आपको खुशी है कि आपको कभी ऐसा नहीं देखना पड़ेगा? इतनी जल्दी नहीं। मैं अपने मरने के दिन तक हमारे राष्ट्रपति की उस घिनौनी तस्वीर को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब वे 911 के कुछ समय बाद एक मस्जिद में खड़े होकर एक समारोह में दुनिया भर में प्रसारित हुए थे, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि अल्लाह अच्छा है और अल्लाह ईश्वर है और अल्लाह ईसाइयों और यहूदियों के ईश्वर के समान ही है, और यह कि इस्लाम एक वैध और सच्चा और शांतिपूर्ण धर्म है जिसकी तुलना बाइबल के धर्म से की जा सकती है। राजा सुलेमान द्वारा मूलतः यही काम करने के लगभग 20 साल बाद उनका देश गृह युद्ध में फंस गया और बिखर गया। लगभग 3000 वर्षों तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में फिर से प्रकट नहीं हुआ। मैं भविष्यवाणी करने के व्यवसाय में नहीं हूं, न ही प्रभु ने मुझे पवित्र शास्त्रों में जो कुछ भी है उससे परे अपनी योजनाओं के बारे में बताना उचित समझा है, लेकिन मुझे समझाइए कि यह कैसे हो सकता है कि हमारे देश का निर्वाचित नेता, जो एक ओर यह दावा करता है कि यीशु प्रभु है, दूसरी ओर यह कह सकता है कि एक झूठा ईश्वर भी प्रभु है और ईश्वर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। दोस्तों, हम सभी ने महसूस किया है कि हम एक फिसलन भरी खाई पर हैं, और मुझे यकीन नहीं है कि प्रभु के खिलाफ किसी राष्ट्र की ओर से किया गया इससे ज्यादा गंभीर अपराध हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी याद दिलाया है, जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने होते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही नेता अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके वादा किए गए देश के बड़े हिस्से से, यहां तक कि मंदिर पर्वत से भी, इसराइल को बेदखल कर रहा है, और वह कहता है कि वह यह सब प्यार और शांति के लिए कर रहा है। ईसाई धर्म के अधिकांश लोगों ने इसे राष्ट्र के राजनीतिक नेता के राजनीतिक होने के रूप में खारिज कर दिया है और इसका इससे अधिक कुछ भी लेना देना नहीं है। यह ठीक है कि राष्ट्र को मूर्ति पूजकों के साथ मिलकर अपने परमेश्वर की पूजा करने के लिए बुलाना ठीक है, अगर यह शांति और प्रेम के नाम पर किया जाता है। खैर, यह ठीक नहीं था जब सुलेमान ने ऐसा किया था, और मुझे संदेह है कि अब यह ठीक है।
आपने कितनी बार प्रेम में कुछ ऐसा किया है जो पूरी तरह से परमेश्वर के शास्त्रों के विरुद्ध था, क्योंकि यह उस समय बहुत दयालु और दयावान लग रहा था? ईमानदारी से यह विश्वास करना कि प्रेम का नियम, जैसा कि आपने देखा, उसकी आज्ञाओं और अध्यादेशों को दरकिनार कर देता है, यहां तक कि यह विश्वास करना कि शब्द तोरह के लेखक यीशुआ ने हमें बताया है कि हमें तोरह में उनके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की अवहेलना करनी चाहिए, बदले में हमें अपने दिल की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि दिल हमारी कल्पनाओं से परे धोखेबाज है। लेकिन अंततः यह इज़राइल के लिए और भी बदतर हो गया। राजा मनश्शे और फिर आमोन यरूशलेम के बेबीलोनियों के हाथों गिरने से पहले के वर्षों में यहूदा के राजाओं ने उन इसराइलियों के लिए मौत की सजा के तहत मोलेक की पूजा की स्थापना की जिन्होंने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। यीशु के दिनों में भी गहनोम में एक वेदी थी, हिन्नोम की घाटी, जो पवित्र शहर के पूर्वी और दक्षिणी किनारों को घेरती है, जहां मोलेक की खुलेआम पूजा की जाती थी और उसके सम्मान में बच्चों को जलाकर मार दिया जाता था।
क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने एक से अधिक अवसरों पर इज़राइल को वादा किए गए देश से बाहर निकाल दिया? क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि यहोवा मोलेक के विरुद्ध इतनी भावुकता से बोलता है? मैंने आपको इस चक्कर में इसलिए ले गया क्योंकि मैं चाहता था कि आप अन्य देवताओं की पूजा को सहन करने की अविश्वसनीय घृणा को समझें और मोलेक का पंथ कितना घातक था, और इज़राइल हर समय एक हद तक इससे संक्रमित था, क्योंकि उन्होंने इसे खत्म करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी थी उसे करने से इनकार कर दिया। मैंने आपको इस चक्कर में इसलिए भी ले गया क्योंकि यह दर्शाता है कि ईमानदारी से यह मानना कितना आसान है कि हम एक सच्चे परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं, जबकि हम उस मूर्ति पूजा के प्रति अंधे हैं जो हमारे जीवन में व्याप्त है, क्योंकि यह हमारे लिए कुछ उपयोगी उद्देश्य पूरा करती है। यीशु मसीह के चर्च के लिए ईमानदारी से यह मानना कितना आसान है कि हम केवल उनके प्रति ही सच्चे हैं, जबकि यह शक्ति, पद और धन की इच्छा से इतना भ्रष्ट हो गया है और सामान्य रूप से दुनिया द्वारा बहिष्कृत नहीं होना चाहता कि समृद्धि और विकास के लिए समावेशी होने के लिए यह लगभग कोई सीमा नहीं है। यही कारण है कि सहिष्णु शब्द को हमारी शब्दावली से मिटा दिया जाना चाहिए। किसी भी कीमत पर सद्भाव और एकता, सहिष्णुता और तुष्टिकरण हमारे समय में सद्गुण बन गए हैं, वे नहीं हैं। वे कायरता, विद्रोह और परमेश्वर के खिलाफ पाप हैं। यह परमेश्वर के खिलाफ होने का चुनाव करना है।
फिर भी आइए स्पष्ट करें, मौलिक वास्तविक नहीं था, चाहे उसके अनुयायी कितने भी ईमानदार और समर्पित क्यों न हो, कि वे अपने बच्चों को मौलिक पंथ के लिए जलती हुई आग में फेंक देंगे। मौलिक मनुष्य की दुष्ट प्रवृत्ति थी, जिसे आसानी से उस दुष्ट पाइड पाइपर शैतान द्वारा निर्देशित किया जा सकता था। कोई मौलिक नहीं है, मौलिक वास्तव में एक आदर्श है। मानव जाति की पतित प्रकृति का एक दिमाग है, और आदर्श यह था कि अगर मौलिक के उपासक अपने बच्चों में से कुछ की बलि देते हैं, तो उन्हें अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि यही उन बच्चों की बलि का उद्देश्य था। आप पहले से ही जानते हैं कि मैं किस ओर जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको सच न बताऊं तो मैं किस तरह का शिक्षक बनूंगा कि गर्भपात आधुनिक समय में बच्चों की बलि है। अजन्मे बच्चों की बलि क्यों दी जाती है? लगभग हमेशा हमारे व्यक्तिगत कल्याण, समृद्धि और आराम के लिए। डॉक्टर कहते हैं शायद कोई दोष है, बेहतर होगा कि इसे हटा दिया जाए, क्योंकि यह महंगा और परेशानी भरा या दिल तोड़ने वाला साबित हो सकता है। टेस्ट ट्यूब के निचले हिस्से में छोटा नीला छल्ला बताता है कि मां के गर्भ में नया जीवन पनप रहा है। ओह, लेकिन इससे हमारी पहले से ही सीमित वित्तीय स्थिति पर बोझ पड़ेगा। बेहतर होगा कि इसे अभी रोक दिया जाए। मानव धर्मनिरपेक्षतावादी और पर्यावरणविद नए जीवन को हमारी अति जनसंख्या वाले उनके दृष्टिकोण से ग्रह के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। इसलिए यह उन लोगों के लिए दयालु और करुणामयी बात है जो पहले से ही इससे छुटकारा पा रहे हैं। यह मौलिक पूजा का सार है, यह मौलिक पूजा है, और मौलिक या बेहतर मौलिक के आदर्श की पूजा करने की सजा, जैसा कि लैव्य व्यवस्था 20 की आयत 2 कहती है, मृत्यु है। निर्दोष पीड़ित की मौत नहीं, हमारी मौत, उन सभी की मौत जिन्होंने यह कृत्य किया, और उन सभी की मौत जो इसे बर्दाश्त करेंगे।
अब आयत 3 में इज़राइल के बीच के व्यक्ति के लिए पत्थर मारने को मृत्युदंड का साधन बताया गया है, अजनबी या नागरिक जो मौलिक की पूजा करता है। इसके अलावा यह कहता है कि कौन मृत्युदंड देने जा रहा है, यह आम हारेट्स है, देश के लोग, साधारण इज़राइली नागरिक। अब यह सतर्कता न्याय के बारे में बात नहीं कर रहा है, यह इस कार्य के लिए नियुक्त, विधिवत नियुक्त लोगों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन वे बुजुर्ग आदिवासी नेता या सरदार नहीं थे, वे पुजारी या न्यायालय के सदस्य नहीं थे, वे निम्न स्तर के नेता थे जिनकी सामान्य सामुदायिक मामलों में किसी तरह की आवाज थी। पत्थर मारना क्यों? दोषियों को तीर से क्यों नहीं मारा जाता, या चाकू से क्यों नहीं मारा जाता, या उनका सिर क्यों नहीं काटा जाता? यह बताना मुश्किल है। अधिकांश विद्वानों का विचार है कि इन अन्य तरीकों में आम तौर पर केवल एक या दो झल्लादों की आवश्यकता होती है, लेकिन पत्थर मारने के लिए कई की आवश्यकता होती है। विचार यह था कि मृत्यु दंड में सामुदायिक भागीदारी हो, और इस तरह इस अपराध की गलतता की सामुदायिक स्वीकृति हो कि वे इसे अपने बीच नहीं चाहते, इसलिए वे इसे मिटा रहे थे। विचार यह था कि फांसी शीघ्र और पीड़ा रहित नहीं होनी चाहिए, यह क्रूर और खूनी होनी चाहिए,
और इससे इज़राइल को यह सीख लेनी चाहिए कि यदि उनका हृदय मौलिक का अनुसरण करना भी चाहे, तो भी वे परिणामों के डर से ऐसा नहीं करेंगे।
अब अगला श्लोक 3 एक और सिद्धांत प्रस्तुत करता है, मृत्यु दो तरफा प्रकृति की हो सकती है। यह शारीरिक मृत्यु हो सकती है, और यह आध्यात्मिक मृत्यु भी हो सकती है। यह उन श्लोकों में से एक है जिसे अंग्रेजी में समझने में चूक हुई है, क्योंकि यह समझा रहा है कि मृत्यु के इस दोहरे पहलू से परे भी शारीरिक और आध्यात्मिक ये भी बात है कि अगर लोग अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे और मोलेक उपासक पर मुकदमा नहीं चलाएंगे तो भी वह व्यक्ति बच नहीं पाएगा। परमेश्वर अपने समय पर अपने तरीके से उसे खत्म कर देंगे।
हमने पहले भी इब्रानी में करेट कट ऑफ के बारे में बात की है। याद दिला दें कि यह एक जटिल शब्द है, इसका मतलब कई तरह की चीजें हैं, जैसे कि सामान्य जीवन अवधि से कम मरना, इसराइल राष्ट्र से बहिष्कृत होना और इसलिए यहोवा से बहिष्कृत होना। इसका मतलब उस परिवार की बाद की पीढ़ी में आने वाला परिणाम भी हो सकता है। इसका मतलब नागरिक प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से निष्पादन हो सकता है। इसका मतलब सीधे परमेश्वर के हाथों तत्काल मृत्यु हो सकती है, जैसा कि महायाजक हारून के बेटों नादाव और अवीहू के साथ हुआ था। लेकिन इन सब का मूल यह है कि कट ऑफ होने की सजा करेट एक दैवीय प्रतिशोध है। यह सिविल कोर्ट की कार्रवाई का परिणाम नहीं है।
हम अगले सप्ताह अध्याय 20 जारी रखेंगे।